पृष्ठ संख्या 221, चतुर्दश अध्याय का चतुर्थ भाग। हेगल के अनुसार दर्शन शास्त्र का लक्ष्य परम तत्व के विकास की समुचित व्याख्या करना है। तर्क शास्त्र का कार्य भी यही है। अतः हेगल के अनुसार तर्कशास्त्र या लॉजिक और दर्शन शास्त्र या मेटाफिजिक्स दोनों एक ही है। परम तत्व निरपेक्ष विज्ञान रूप या शुद्ध चैतन्य रूप है। इस तत्व की वैज्ञानिक आलोचना दर्शन शास्त्र का विषय है। अतः दर्शन सब विज्ञानों का विज्ञान है। तर्कशास्त्र का विषय भी निरपेक्ष विज्ञान के विकास के विविध सोपानों की क्रमबद्ध व्याख्या ही है। अब तर्कशास्त्र बुद्ध विकल्पों को अमूर्त विज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मानकर केवल शुष्क अनुमान प्रक्रिया का विश्लेषण किया करता था। उसके तादात्म्य और विरोध आदि नियम केवल हमारे अमूर्त विचारों तक ही सीमित माने जाते थे, किंतु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है जिसे हम वस्तु जगत कहते हैं। वह भी विज्ञान का ही परिणाम है। विज्ञान मूर्त और वास्तविक है। विज्ञानों के नियम वस्तु जगत पर भी लागू होते हैं। कांट ने अपने इस कथन से कि हमारी बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है एक युग प्रवर्तक विचारधारा स्थापित की, किंतु कांट स्वयं इस कथन का पूर्ण आशय नहीं समझ सके और उनके बुद्ध विकल्प खोखले सांचे मात्र रह गए, जिनको अपनी सामग्री के लिए इंद्रिय संवेदनों पर निर्भर रहना पड़ा। इसीलिए कांट ने प्रज्ञा को भी नियामक ही माना, उपादान रूप नहीं। यह कांट की भारी भूल थी। वस्तुतः इंद्रिय संवेदन भी प्रज्ञा के ही क्षीण रूप हैं। जो कुछ है सब चैतन्य या विज्ञान का ही विकास है। बुद्ध विकल्प इस विज्ञान के विकास के मूर्त सोपान हैं। विज्ञान व्यतिरिक्त कोई सत्ता नहीं। विज्ञानों के नियम वस्तु जगत के नियम हैं। अतः तर्कशास्त्र या ज्ञान मीमांसा और दर्शन शास्त्र या तत्व मीमांसा दोनों एक ही है, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र तत्व है। हेगल के अनुसार एकमात्र तत्व निरपेक्ष या पूर्ण विज्ञान या एब्सोल्यूट आइडिया है। संपूर्ण विश्व इसी का परिणाम है। इंद्रिय संवेदन, भावना, इच्छा, संकल्प आदि सब विज्ञान के ही विविध रूप हैं। विज्ञान की ही नित्य सत्ता है। विशुद्ध विज्ञान और विशुद्ध विज्ञाता में कोई अंतर नहीं। विज्ञाता द्रव्य रूप नहीं है और न विज्ञान उसका आगंतुक धर्म या गुण है। विज्ञाता विज्ञान स्वरूप ही है। विज्ञाता का कभी निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि निराकरण में भी निराकर्ता की सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती है। पृष्ठ संख्या 222, निराकरण और स्वीकरण, खंडन और मंडन, असिद्धि और सिद्धि, निषेध और विधान सब विज्ञाता के कारण संभव हैं। विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञाता और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। चित शक्ति और चित शक्तिमान में कोई भेद नहीं। इस चैतन्य या विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता है। अखिल विश्व इसी का परिणाम है। हेगल की सिद्ध उक्ति है, जो चित है वही सत है और जो सत है वही चित है, अथवा बोध ही सत्ता है और सत्ता ही बोध है। समस्त विश्व में जिन पदार्थों की सत्ता प्रतीत होती है, वे सब पदार्थ विज्ञान के ही विविध रूप हैं। उनकी सत्ता इसीलिए है कि वे विज्ञान की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण विज्ञान के विकास के विविध स्तर हैं। चित में और सत में, बोध में और सत्ता में, ज्ञान में और तत्व में, आत्मा में और प्रकृति में, विज्ञान में और वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जो कुछ है वह सब विज्ञान के विकास का परिणाम है। विज्ञान केवल अमूर्त विचार नहीं है। जिसकी सत्ता हमारे मस्तिष्क में है वह मूर्त वस्तु है, केवल वही सत कहलाने का पात्र है। विज्ञान चित शक्ति है, जो स्वयं को इस विश्व के रूप में अभिव्यक्त करती है। हेगल ने विज्ञान शब्द को विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया है, जिसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए। विज्ञान शब्द का प्रचलित अर्थ है प्रत्यय, जो हमारे मस्तिष्क का अमूर्त विचार या सामान्य है, किंतु हेगल के अनुसार विज्ञान मूर्त सामान्य है। हेगल के निरपेक्ष विज्ञान का स्वरूप पहले ही समझ लेना अच्छा होगा। इसके लिए हेगल ने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। हेगल के अनुसार केवल भेद या द्वैत और केवल अभेद या अद्वैत दोनों ही कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। अभेद और भेद दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। इनमें अभेद प्रधान है और भेद गौण है। भेद अभेद के आश्रय पर ही टिकता है और बिना अभेद के नहीं रह सकता। किंतु अभेद की कल्पना भी बिना भेद के नहीं हो सकती। अभेद सदा भेद से विशिष्ट रहता है। भेद विशेषण है, अभेद विशेष्य है। भेद गौण है, अभेद मुख्य है, किंतु रहते दोनों साथ साथ हैं। बिना विशेषणों के विशेष्य की कल्पना नहीं हो सकती। बिना गुणों के द्रव्य की कल्पना नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिना विशेष्य के विशेषण टिक नहीं सकते। द्रव्य के आधार के बिना गुणों की सत्ता नहीं हो सकती। अतः कोई वस्तु निर्विशेष नहीं हो सकती। निर्विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तत्व सदा भेद विशिष्ट अभेद रूप या विशिष्टाद्वैत रूप होता है। इस विषय में हेगल का रामानुजाचार्य से पूर्ण मैतक्य है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है द्वैत विशिष्ट अद्वैत, अर्थात अनेकता में अनुस्यूत एकता या यूनिटी इन डिफरेंस या भेद में अंतर्यामी अभेद। पृष्ठ संख्या 223 हेगल का विज्ञान विशिष्टाद्वैत रूप है, अर्थात अनेकता में अनुस्यूत एकता है। विशिष्टाद्वैत विज्ञान स्वचेतन या सेल्फ कॉन्शियस होता है। हेगल के शुद्ध विज्ञान या शुद्ध चैतन्य का अर्थ सदा स्वचेतन से है, अमूर्त चैतन्य या प्योर कॉन्शियसनेस से नहीं। विज्ञान मूर्त सामान्य या कंक्रीट यूनिवर्सल आर नोशन है, अमूर्त सामान्य या एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल नहीं। यह समष्टि रूप या सिस्टम है, यह अव्ययी या अंगी या होल है, यह समष्टि व्यक्ति या इंडिविजुअल है। इसके विशेषण रूप भेद इसके अवयव या अंग हैं। निरपेक्ष विज्ञान अपने अवयव या अंगों या पार्ट्स आर मेंबर्स में अनुस्यूत अभेद है। यह अपने अवयवों में अंतर्यामी या इमानेंट रूप से रहता है। इसकी सत्ता अवयवों में ही प्रतीत होती है। यह अवयव से पृथक और नितांत भिन्न नहीं है, फिर भी इसके अवयव इसकी सत्ता को सीमित नहीं कर सकते। यह अवयवों का समूह मात्र नहीं है, यह उनसे विशिष्ट और उनमें अनुस्यूत अभेद है। अनेकता में भी इसकी एकता अक्षुण है, भेद में भी इस अभेद की क्षति नहीं होती। समस्त भेद या अवयव इसी से अनुप्राणित होते हैं। प्रत्येक भेद या अवयव इस निरपेक्ष विज्ञान की एक धारणा या इसका एक विकल्प या कैटेगरी है, जो इसे अपने रूप में अव्यक्त करता है। निरपेक्ष विज्ञान व्यष्टियों में अंतर्यामी समष्टि है। प्रत्येक धारणा इस समष्टि के व्यक्तित्व को न्यूनाधिक रूप में अव्यक्त करती है। इसीलिए इस निरपेक्ष विज्ञान के विकास के विभिन्न स्तरों में तारतम्य है। ये सब अवयव सोपानवत क्रमबद्ध है और निरपेक्ष विज्ञान के प्रकाश से ही प्राणवान है। अवयव और अवयवी में जीवित संबंध या ऑर्गेनिक रिलेशन है। यों तो प्रत्येक समष्टि में व्यवस्था नियम प्रायणता और एक रूपता रहती है, किंतु जीवित समष्टि में यह और अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए एक मकान को भी हम ईंट पत्थर चूना सीमेंट आदि का समूह मात्र नहीं कह सकते, क्योंकि सुव्यवस्थित बनकर ही वे मकान का रूप ले सकते हैं। अतः ईंट पत्थर चूना आदि से निर्मित होने पर भी मकान उनका समूह मात्र नहीं है, उसकी अपनी एक विशेषता है। इसी प्रकार का एक घड़ी भी अपने पुर्जों का समूह मात्र नहीं है, उसमें भी एक व्यवस्था और सामंजस्य है। प्रत्येक पुर्जा अपने कार्य व्यवस्थित रूप से करता है और अन्य पुर्जों से संबद्ध है। यदि एक पुर्जे में खराबी आ जाए तो सारी घड़ी ही चलना बंद कर देगी। एक पुर्जे की खराबी का प्रभाव अन्य सब पुर्जों पर और पूरी घड़ी पर पड़ता है। पृष्ठ संख्या 224। इसी प्रकार जीवित शरीर को ले लीजिए। शरीर विभिन्न अवयवों से बना है, प्रत्येक अवयव में प्राण है और प्रत्येक अवयव का अपना विशिष्ट कार्य है। प्रत्येक अवयव इन अवयवों से और अवयवी से संबद्ध है। अवयवों से गति है, प्रगति है, क्रिया है, जीवन है, वृद्धि है, विकास है। एक अवयव के विकार का प्रभाव अन्य सब अवयवों के पर और अवयवी पर पड़ता है। शरीर अवयवों का समुदाय है और आत्मा उसका अवयवी है, जो प्रत्येक अवयव में अंतर्यामी होकर उसको अनुप्राणित करता है। अवयव और उसका अवयवी का संबंध जीवित संबंध है। अवयवी अवयवों से भिन्न नहीं है, क्योंकि उन्हीं में अंतर्यामी है। फिर भी अवयवी को अवयवों का समूह मात्र नहीं कह सकते, उसकी अपनी विशिष्ट सत्ता भी है। अवयव भिन्न भिन्न है, अवयवी इन भेदों में व्याप्त अभेद है। इसीलिए अवयवी को व्यक्ति या समष्टि या मूर्त सामान्य या विशिष्टाद्वैत तत्व कहा जाता है। निरपेक्ष विज्ञान का और विश्व के समस्त पदार्थों का संबंध अवयवी के और उसके अवयवों का जीवित संबंध है। निरपेक्ष विज्ञान, जो हेगल का एकमात्र अवयवों का जीवित संबंध है, निरपेक्ष विज्ञान है, जो हेगल का एकमात्र परम तत्व है, समस्त विश्व में अंतर्यामी अवयवी है। प्रत्येक पदार्थ उसी की सत्ता से अनुप्राणित है और अपने सीमित रूप में उसी की अभिव्यक्ति करता है। अतः इस निरपेक्ष विज्ञान रूप परम तत्व के लिए हेगल ने समष्टि व्यक्ति, मूर्त सामान्य या विज्ञान, विशिष्टाद्वैत तत्व, स्वचेतन अवयवी, अंगी अंतर्यामी, आत्मा आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका हम स्पष्टीकरण कर चुके हैं। यह निरपेक्ष विज्ञान या एब्सोल्यूट आइडिया सर्वप्रथम अमूर्त विज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल आइडिया के रूप में प्रतीत होता है। अमूर्त विज्ञान शुद्ध विषयी के रूप में होता है। यह अपने आप में ही प्रतिष्ठित शुद्ध अभेद रूप या आइडिया इन इटसेल्फ है, और इसलिए यह अपूर्ण है। विषयी को सदा विषय की अपेक्षा होती है, ज्ञाता को सदा ज्ञेय की अपेक्षा होती है। अतः विज्ञान फिर विषय या जड़ जगत या प्रकृति के रूप में प्रतीत होता है। यह विज्ञान का बाह्य रूप या आइडिया आउटसाइड इटसेल्फ है। यह शुद्ध भेद रूप है। चैतन्य यहाँ सुप्त प्रतीत होता है। यह सुप्त चैतन्य फिर अपने विकास के लिए उन्मुख होता है। जड़ जगत से वनस्पत जगत में यह प्राण रूप हो जाता है और फिर पशु जगत में चेतन बन जाता है। मानव आत्मा में जाकर यह स्वचेतन बनता है। स्वचेतन में विषयी और विषय का द्वैत विरोध रूप में नहीं रहता, उसका समन्वय हो जाता है। यह विज्ञान न केवल अभेद है और न केवल भेद, अब यह भेद विशिष्ट अभेद बन गया है। पृष्ठ संख्या 225। अमूर्त विज्ञान बाह्य विज्ञान से संवलित होकर अवमूर्त विज्ञान या आइडिया इन एंड फॉर इट्सेल्फ बन गया है, जो अपने में और अपने लिए अब इसने अपने निरपेक्षत्व और पूर्णतत्व को पा लिया है। अमूर्त विज्ञान का विकास बाह्य विज्ञान द्वारा मूर्त विज्ञान के रूप में हो, यही सृष्टि का प्रयोजन है। विश्व के समस्त पदार्थ इस विकास के विभिन्न स्तर हैं और इस विकास की पूर्णता के लिए गतिशील हैं। जिनको हम वस्तु जगत कहते हैं, वह विज्ञान का ही बाह्य रूप है। वह पहले भी विज्ञान रूप था और बाद में भी विज्ञान रूप रहता है। अमूर्त विज्ञान प्रकृति के रूप में इसीलिए परिणत होता है कि उसके द्वारा वह मूर्त विज्ञान बनकर अपने असली स्वरूप का लाभ करे। इस विकास के पीछे वस्तुतः निरपेक्ष विज्ञान की ही सत्ता है, जिसको प्राप्त करने के लिए ही यह विकास होता है। किंतु यह विकास निषेध या विरोध के द्वारा होता है, जिसका हेगल के दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः अब हम इस निषेध का विवेचन करेंगे। हेगल का दर्शन विज्ञान का विकासवाद है, जिस शक्ति के कारण विकास संभव होता है उसका नाम है निषेध या निगेशन या विरोध या कंट्राडिक्शन। लोग निषेध या विरोध से घबराते हैं, किंतु हेगल के अनुसार इसमें भय की कोई बात नहीं। निषेध या विरोध के कारण ही गति, प्रगति, जीवन, वृद्धि, विकास आदि संभव होते हैं। निषेध या विरोध का प्राण स्पंदन है, इसका अभाव मृत्यु है। वस्तुतः निषेध या विरोध दुख समनी शून्यता या अभय पद है। लोग इससे व्यर्थ ही घबराते हैं, अभय में भय की कल्पना करते हैं। इस निरर्थक भय का कारण निषेध या विरोध के वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है। हेगल के अनुसार पूर्ववर्ती पाश्चात्य दार्शनिकों ने इसके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझा। हेगल ने लिखा है, अभी तक यह तर्कशास्त्र एक गहरा अंधविश्वास और जनसाधारण में प्रचलित धारणा है कि विरोध तत्व के लिए उतना ही आवश्यक नहीं जितना तादात्म्य। किंतु वस्तुतः विरोध के आगे तादात्म्य एक निर्जीव वस्तु प्रतीत होता है। विरोध समस्त गति और जीवन का स्रोत है। किसी वस्तु की गति शक्ति या कार्य रूप में परिणति तभी संभव हो सकती है जब उसमें विरोध हो। हेगल के अनुसार निषेध अखिल विश्व का प्राण है। किसी वस्तु की अनिवार्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए उसके निषेध से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। पृष्ठ संख्या 226। यदि किसी वस्तु के निषेध का निषेध या विरोध का विरोध सिद्ध हो जाए तो उस वस्तु की सत्ता अनिवार्यतया सिद्ध हो जाती है। अब तक तर्कशास्त्र का विषय अमूर्त विज्ञानों का विवेचन रहा है। ये अमूर्त विज्ञान हमारी कल्पना मात्र है और तर्कशास्त्र का कार्य अपने स्वतः सिद्ध तादात्म्य नियम, विरोध नियम और मध्यम योग परिहार नियम द्वारा इन काल्पनिक विज्ञानों के परस्पर संबंधों को सिद्ध या असिद्ध करना रहा है। तादात्म्य नियम के अनुसार क सदा क है, अर्थात प्रत्येक वस्तु सदा एक रूप रहती है, वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, किंतु यह सिद्धांत पुनरुक्ति मात्र है और फिर इस परिवर्तनशील जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा एक रूप रह सके। यह सत्य है कि नित्य अधिष्ठान के बिना परिवर्तन संभव नहीं होता, किंतु इस सत्य को उपयुक्त तादात्म्य नियम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। विरोध नियम के अनुसार क ख और अ ख दोनों नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी वस्तु एक साथ सत और असत दोनों नहीं हो सकती। एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते, किंतु यह संभव है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक पदार्थ में विरोधी धर्मों का रहना अनिवार्य है। प्रत्येक वस्तु में यह शक्ति होती है कि वह अपने विरोधी को जन्म दे। मध्यम योग परिहार नियम के अनुसार क या तो ख है या अख है, अर्थात प्रत्येक वस्तु या तो सत है या असत है। सद सद निर्वचनीय की कल्पना असंभव है। प्रत्येक वस्तु में दो विरोधी धर्मों में से एक धर्म का रहना अनिवार्य है। यह नियम भी विरोध नियम का ही दूसरा रूप है और उसी के समान यह भी असंभव है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक पदार्थ में दोनों विरोधी धर्म रहते हैं। हेगल के अनुसार तर्कशास्त्र के ये नियम तर्कशास्त्रियों की कल्पना मात्र है। ये नियम तर्कशास्त्र के काल्पनिक अमूर्त विज्ञानों पर भले ही लागू होते हों, किंतु वस्तु जगत में ये लागू नहीं हो सकते। वास्तविक पदार्थ इन नियमों के नियंत्रण में नहीं रहते। हेगल के अनुसार विज्ञान ही तत्व है और विज्ञान अमूर्त न होकर मूर्त सामान्य रूप है। इन वास्तविक विज्ञानों पर ये नियम लागू नहीं हो सकते। पूर्वोक्त तीनों नियमों का आधारभूत नियम विरोध नियम है। विरोध को तर्कशास्त्रियों ने गलत समझा है। उनके अनुसार सच्चा विरोध आत्यंतिक विरोध होता है। वैसे तो तर्कशास्त्रियों ने चार प्रकार के विरोध माने हैं: समावेश, सब अल्टरनेशन, विरोध कंट्रारिटी, उपविरोध सब कंट्रारिटी और आत्यंतिक विरोध कंट्राडिक्शन। इनमें समावेश तो विरोध है ही नहीं और उपविरोध के अंतर्गत आ जाता है। पृष्ठ संख्या 227। अतः विरोध दो प्रकार का रह जाता है, विरोध और आत्यंतिक विरोध। इन दोनों में भी असली विरोध इन तर्कशास्त्रियों के अनुसार आत्यंतिक विरोध ही है। विरोध नियम में विरोध से तात्पर्य आत्यंतिक विरोध से ही है। किसी वस्तु में दो आत्यंतिक विरोधी धर्म नहीं रह सकते। हेगल इस नियम को मिथ्या सिद्ध नहीं करते। कई लोगों ने हेगल पर यह आक्षेप किया है कि हेगल ने विरोध नियम की अवहेलना करके उसको मिथ्या सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यह आक्षेप गलत है, इसका विवेचन हम आगे करेंगे। यहाँ यही कह देना पर्याप्त है कि हेगल ने न तो विरोध नियम को मिथ्या सिद्ध किया है, यह असंभव है, और न ही इनकी अवहेलना की है, यह भी असंभव है। हेगल ने विरोध नियम को उस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में वह तर्कशास्त्रियों को मान्य रहा है। हेगल का मत है कि आत्यंतिक विरोध असंभव है, विरोध सदा भेद रूप या डिफरेंस होता है। यह भेद तर्कशास्त्रियों का विरोध या कंट्रारिटी है, आत्यंतिक विरोध या कंट्राडिक्शन नहीं। जब आत्यंतिक विरोध की वस्तु जगत में सत्ता ही नहीं, तो यह कहना कि किसी भी वस्तु में दो आत्यंतिक विरोधी धर्म नहीं रह सकते व्यर्थ है। श्वेत और अश्वेत में आत्यंतिक विरोध माना जाता है, तथा श्वेत और कृष्ण में केवल विरोध। वस्तुतः देखा जाए तो श्वेत रंग और अश्वेत में क्या विरोध हो सकता है? अश्वेत के अंतर्गत श्वेत रंग को छोड़कर संसार के सभी पदार्थ आ जाते हैं। ईश्वर, कर्तव्य, विश्वविद्यालय आदि भी अश्वेत हैं। यदि कोई कहे श्वेत रंग ईश्वर नहीं है या श्वेत रंग विश्वविद्यालय नहीं है, तो कितना हास्यास्पद होगा। विरोध वही हो सकता है जहां अभेद मूलक भेद हो। अभेद मूलक भेद सापेक्ष विरोध या कंट्रारिज में संभव है, अतः असली विरोध भी यही है। उदाहरणार्थ श्वेत और कृष्ण दोनों में भेद है, किंतु दोनों में अभेद भी है, क्योंकि दोनों रंग हैं। यह कथन कि श्वेत रंग कृष्ण रंग नहीं है उचित प्रतीत होता है। श्वेत रंग कृष्ण रंग से भिन्न है, किंतु दोनों में रंग की एकता अनुगत है। यह विरोध अपरिहार्य भी नहीं, क्योंकि श्वेत और कृष्ण के सम्मिश्रण से एक नया रंग बनाया जा सकता है। अतः हेगल के अनुसार विरोध कभी आत्यंतिक विरोध नहीं हो सकता। विरोध का असली अर्थ है भेद, और भेद सदा अभेद मूलक होता है। बिना अभेद के भेद टिक नहीं सकता। भेद गौण है और अभेद का विशेषण है, किंतु विशेषण रूप से भेद सदा अभेद के साथ लगा रहता है। निर्विशेष नामक कोई वस्तु नहीं। प्रत्येक वस्तु यदि वह सत है तो सदा विशिष्टाद्वैत रूप होगी। प्रत्येक वस्तु में यह शक्ति है कि वह भेद को उत्पन्न करे और फिर उस भेद को अपना विशेषण बनाकर अपने स्वरूप में सम्मिलित कर ले।